नमस्कार भारत, 22 नवंबर गुरुवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। जम्मू कश्मीर में सियासी उठापटक, एनसीपीडीपी कांग्रेस ने मिलाया हाथ तो राज्यपाल ने भंग की विधानसभा।
There is progress between the three parties, जो हमारी एक स्पेशल स्टेटस है उसके बचाव के लिए तीनों पार्टियों ने डिसाइड किया है टू जॉइन हैंड्स।
अमृतसर धमाके मामले में मुख्यमंत्री ने बताया आईएसआई का हाथ।
इस पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निशान है एंड दीज आर POF मेड पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ग्रेनेड्स।
और दुनिया जहान में आज चीन और ताइवान के रूठने मनाने की कहानी।
जो आकर्षण है ताइवान का, उसकी वजह से आज भी करीब 80 देश अपने आप को उससे जुड़ा पाते हैं, पर जाहिर है कि वो उसको एक औपचारिक रूप से देश का दर्जा नहीं देते हैं।
अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। भारत के उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर में पिछले 5 महीनों से चले आ रहे राज्यपाल शासन के बाद कल विधानसभा को भंग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग करने की घोषणा की और कहा कि फिलहाल राज्य में किसी भी दल के पास स्थिर सरकार बनाने का मौका नहीं है। इससे पहले कल दिन भर कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की खबरें चलती रहीं। राज्यपाल के फैसले के बाद इन तीनों दलों ने कहा कि उनके गठबंधन को रोकने के लिए ही यह फैसला लिया गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के चीफ जस्टिस के बीच मतभेद उस समय खुलकर सामने आ गए जब ट्रंप ने चीफ जस्टिस को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का जज बता दिया। दरअसल अमरीका में गैरकानूनी तौर पर सीमा पार कर आए प्रवासियों को रोकने के लिए बनाई गई नीति पर अस्थायी रोक लगाने के अपने फैसले के दौरान चीफ जस्टिस रॉबर्ट ने कहा कि यहाँ कोई ओबामा का जज, ट्रंप का जज, बुश का जज या क्लिंटन का जज नहीं है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि यहाँ ओबामा के जज मौजूद हैं जिनका नज़रिया लोगों की सुरक्षा से काफ़ी अलग है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि ब्रेक्सिट के मसौदे पर यूरोपीय कमीशन के प्रमुख जीन क्लॉड जंकर के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही। टेरेसा मे ने कहा कि वे इस मुद्दे से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं की ब्रसेल्स में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद कमीशन के प्रवक्ता ने भी इसे एक सफल मुलाकात बताया। टेरेसा मे ने कहा कि आने वाले दिनों में वे जंकर से दोबारा मुलाकात कर और चर्चा करेंगी। टेरेसा मे ने कहा,
We've had a very good meeting this evening. We've made further progress, and as a result, we've given sufficient direction to our negotiators. I hope for them to be able to resolve.
हमारे बीच आज बहुत अच्छी मुलाकात हुई। हम इस फैसले की तरफ और आगे बढ़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही बाकी सभी मसलों पर भी सहमति बना लेंगे। मैं अब कुछ और बैठकों की योजना बना रही हूँ। मैं शनिवार को जंकर से दोबारा मुलाकात करूँगी। ये थे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के शब्द। अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि मंगल अभियान के लिए भेजा गया उनका स्पेसक्राफ्ट इनसाइट सोमवार तक मंगल की सतह पर पहुंच जाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट मई में धरती से प्रक्षेपित किया गया था और अभी तक इसने 300 मिलियन मील की दूरी तय कर ली है। अगर यह स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतर जाता है तो यह अगले 2 साल तक इस ग्रह की जाँच करेगा। नासा के लैंडिंग इंजीनियर जूली वुर्ज ने इस संबंध में कहा,
It's a really, really difficult thing to do to land on another planet.
हमने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छे से किया है और हमें कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। सबसे मुश्किल काम लैंडिंग का ही होता है। हम यह मानकर नहीं चल रहे हैं कि कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमें नहीं पता मंगल पर कब कैसे हालात बन जाएं। ये थे नासा की लैंडिंग इंजीनियर जूली वुड्ज के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्राज़ील में काम कर रहे क्यूबा के हज़ारों डॉक्टरों ने अपना काम करना बंद कर दिया है और वे सभी वापस अपने देश लौटने की तैयारियां कर रहे हैं। पिछले हफ्ते क्यूबा ने घोषणा की थी कि वह अपने 8,000 डॉक्टरों को ब्राज़ील से वापस बुला रहा है। ये तमाम डॉक्टर ब्राज़ील के बेहद दुर्गम इलाकों में काम कर रहे थे। यह फैसला दरअसल ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के उस बयान के बाद लिया गया जिसमें उन्होंने क्यूबा के डॉक्टरों की कमाई और उनकी योग्यता पर सवाल उठाए थे। ब्रिटेन के एक नागरिक को संयुक्त अरब अमीरात में जासूसी के आरोपों के चलते उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ब्रिटेन ने इस फैसले पर निराशा जाहिर की है और कहा है कि वे इस मामले को UAE के सामने सर्वोच्चतम स्तर तक उठाएंगे। मैथ्यू हैच नामक ब्रिटिश शोधार्थी को अपना पक्ष रखने के लिए कोई वकील नहीं दिया गया और उनकी सुनवाई महज 5 मिनट चली। मैथ्यू इस साल मई में दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। वे UAE की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर शोध करने के बाद स्वदेश लौट रहे थे। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। तेजी से बदले घटनाक्रम के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रदेश की विधानसभा को भंग कर दिया है। बुधवार को पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन और पीपल्स पार्टी के प्रमुख सज्जाद लोन की ओर से अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे पेश किए गए थे, लेकिन सरकार बनाने की कोशिशें विफल हो गईं। विधानसभा भंग करने का आदेश जारी करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मैं कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा को भंग करता हूँ। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
बुधवार को राज्य में पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया था और इस बात की पुष्टि की थी कि तीनों ही जमातों ने सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। इस घोषणा के बाद बुधवार शाम को पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक को एक पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। महबूबा मुफ्ती का सरकार बनाने के दावे के साथ ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और बीजेपी के सहयोगी सज्जाद लोन ने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दोनों का सरकार आने के दावों के साथ ही राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा को बुधवार देर रात भंग कर दिया। पीडीपी के वरिष्ठ नेता सईद अल्ताफ हुसैन बुखारी ने बुधवार को श्रीनगर में मीडिया को बताया था कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस तीनों ही जमातों ने सरकार बनाने के लिए हामी भर ली है,
लेकिन ये बात सच है कि देयर इज प्रोग्रेस बिटवीन द थ्री पार्टीज। जैसे हालात हैं रियासत के और रियासत का तशक्कुस के बचाव के लिए, जो हमारी एक स्पेशल स्टेटस है उसके बचाव के लिए, तीनों पार्टियों ने डिसाइड किया है टू ज्वाइन हैंड्स। बाकी ये लीडरशिप लेवल पे है, अभी हमारी लेवल पे ये बात नहीं आई है। ये बात सच है, हमें भी जो इतलात हैं वो यही हैं कि जो चैलेंज है स्पेशल स्टेटस को, उसके लिए तीनों पार्टियों ने डिसाइड किया है कि दे विल ज्वाइन हैंड्स टू गिव अ गवर्नमेंट एंड डिफेंड द स्पेशल स्टेटस।
राज्यपाल की ओर से विधानसभा भंग करने को लेकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कई सारे ट्वीट किए हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में राज्यपाल के घर पर फैक्स काम नहीं कर रहा था, हमारे फैक्स को लिया नहीं गया, लेकिन बहुत तेजी के साथ विधानसभा भंग करने का फैक्स जारी किया गया। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक और ट्वीट में लिखा था कि उन्होंने राज्यपाल को फैक्स के जरिए सरकार बनाने का दावा के लिए एक पत्र लिखा था, लेकिन उनके फैक्स को लिया नहीं गया। उमर अब्दुल्ला ने भी अपने एक ट्वीट में विधानसभा भंग करने के हवाले से लिखा है, एनसी बीते 5 महीनों से विधानसभा भंग करने के लिए कह रही है, ये तो इत्तेफाक ही हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती के सरकार बनाने के दावा पत्र के फौरन बाद विधानसभा को भंग करने का आदेश सामने आया। राज्य में इस समय राज्यपाल शासन लागू है। बीते जून को राज्य में पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार टूट चुकी है। बीजेपी ने गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था। बीते 5 महीनों में ये खबरें भी गश्त कर रही थी कि सज्जाद लोन बीजेपी और पीडीपी के कई बागी उम्मीदवारों के साथ सरकार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उधर बीजेपी ने अपने पार्टी ट्विटर हैंडल पर लिखा है, इन परिस्थितियों में सबसे अच्छा विकल्प यह है कि नए चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए, यह विधानसभा मजबूत सरकार नहीं दे सकती है। जम्मू कश्मीर में बीते 2 दिनों से अपने चरम पर इस राजनीति का अगला कदम क्या होगा, इसका सबको इंतजार रहेगा। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
महाराष्ट्र के मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर आज किसानों का हुजूम नजर आएगा। महाराष्ट्र के ठाणे से चलकर किसानों का एक हुजूम अपनी मांगों के साथ आज मुंबई पहुंच रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मुंबई, जहां बीबीसी मराठी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर मौजूद हैं। मयूरेश, कितनी संख्या इन किसानों की बताई जा रही है और क्या इनकी मांगे हैं?
जी, करीब 5 से 6 हजार की तादाद में ये सब किसान जो है वो मुंबई के, मान लीजिए मुंबई में पहुंच ही गए हैं, और वो आज जो विधानसभा है जहाँ पे सेशन चल रहा है उसकी तरफ आगे कूच करेंगे। ये जो किसान हैं, हमने ये भी देखा था कि कुछ 5-6 महीने पहले इससे भी बहुत बड़ा, करीब 30 से 40 हजार किसान जो है वो इसी तरह मुंबई में आए थे। उनकी मांग ये थी कि जो पूरा लोन है, जो किसान का कर्जा होता है, वो पूरी तरह माफ किया जाए। तो इस वक्त भी उनकी वो सबसे बड़ी मांग है ही। उसके साथ जो मिनिमम प्राइस है क्रॉप्स के लिए वो बढ़ाई जाए, वो भी उनकी मांग है। ये लोग जो है वो ज्यादातर उत्तर महाराष्ट्र जो है, धुलिया, नासिक, जलगांव, इस इलाके से हैं जहाँ पे आदिवासी यानी ट्राइबल बेल्ट भी बहुत ज्यादा है। तो उनकी भी अपनी एक मांगे हैं कि वो जो वहाँ पे वो फॉरेस्ट एरिया होता है, वहाँ पे वो खेती करते हैं, तो वहाँ का जो जहाँ पे वो खेती करते हैं वो उनके नाम पे हो जाए, तो ये भी उनकी मांग है।
एक सवाल का और संक्षेप में आप मयूरेश जवाब दें कि क्या इस विरोध प्रदर्शन को अब तक कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है?
जी नहीं, किसी भी राजनीतिक दलों ने समर्थन नहीं दिया है। ये सब किसान के लिए काम करने वाली जो संगठनाएं हैं उनमें से कुछ संगठनाओं ने ये सब किया है, लेकिन सरकार इसकी तरफ जरूर देखेगी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव भी आने वाले हैं, तो किसी भी तरह का जो आंदोलन है किसानों का खासकर, किसी भी तरह की पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना बन जाए सरकार के लिए। शायद हो सकता है कि महाराष्ट्र की तरफ से किसी मंत्री को बात ये चल रही है, गिरीश महाजन जो है वो इसी इलाके से आते हैं, उनको इन आंदोलनकर्ताओं के पास भेज दिया जाएगा और शायद सरकार
उनसे बात करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया मयूरेश कोन्नूर, हमसे जुड़े थे मुंबई से।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर के पास निरंकारी भवन में बीते रविवार को हुए ग्रेनेड हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया है जबकि दूसरे को फरार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ दोनों अभियुक्तों के परिवार उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
इस पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निशान है एंड दीज आर पीओएफ मेड पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ग्रेनेड्स।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि अमृतसर के पास स्थित निरंकारी भवन में हुए ग्रेनेड हमले के एक दोषी को पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। रविवार के रोज अमृतसर के गांव अदरीवाल में हुए एक ग्रेनेड हमले में 3 लोग मारे गए थे और 20 के करीब लोग जख्मी हो गए थे। हमलावर 2 नकाबपोश युवक थे। एक विक्रमजीत नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि दूसरा अवतार सिंह अभी तक फरार है। पुलिस का कहना है कि अवतार सिंह ने ग्रेनेड फेंका था। कैप्टन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को इस घटना का दोषी बताते हुए पंजाब पुलिस की तारीफ की है कि उन्होंने 72 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व कर दिया है। बीबीसी ने आज विक्रमजीत और अवतार सिंह के गाँव का दौरा किया और दोनों युवकों के गाँव धारीवाल बग्गा और चकमिश्री खान जो कि पंजाब बॉर्डर पर स्थित है, हमने गांव वालों को और इनके परिवार वालों से बात भी की। विक्रमजीत की मां सुखविंदर कौर का कहना है कि उनके बेटे को फंसाया गया है।
मेरे मुंडे ने नहीं मारे, क्यों मारना ही उन्हें? मेरे मुंडे नहीं मारे, ये नहीं हो सकता, फंसा आता उनके लिए। मोटरसाइकिल उधर हैगा सी, पल्सर।
विक्रमजीत के पिता का देहांत हो चुका है और वह 12 कक्षा तक पढ़ा है। अपनी माँ के साथ अपने पैतृक घर में ही रहता था। विक्रमजीत का घर गुरुद्वारे के साथ है और गाँव वाले विक्रम के घर आज इकट्ठे हो रहे थे। विक्रम के चाचा सुखविंदर सिंह ने हमें बताया कि विक्रमजीत को रविवार के रोज ही पुलिस रात को उठा के ले गई थी। उनका कहना था,
लेके जी रात आए तो चौके लगे, किसी ने पूछा नहीं, उन्हें किसी ने किसी ने कोई गल नहीं, कोई गल नहीं की, चौके ले गए दिन ही उसे गए, कोई सानू मिलया नहीं। झूठा सारा पिंड दी सफाई दे सकदा, सारा पिंड लागे पिंड शरेपला वह भी सफाई दे सकदा, एहो जिहा मुंडा है नहीं गा साडे पिंड। जदों पहला अतवाद इन्हें उदो कोई नहीं मुंडा है, हुण किस तरह आ गया भाई साहब दी उम्र होनी।
इस हमले के दूसरे मुजरिम जिसकी पुलिस ने अवतार सिंह नाम से शनाख्त की है, वह भारत पाकिस्तान बॉर्डर के गांव चकमिश्री खां में रहता था और आरएमपी डॉक्टर का काम करता है। अवतार सिंह अभी फरार है, उसके घर पर कोई नहीं था, पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था। पड़ोसियों का कहना था कि पिछले 2-3 रोज से घर पर कोई नहीं है। पुलिस लगातार यहां पे छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पंजाब पुलिस डीजीपी को इस केस को जल्द सॉल्व करने की बधाई दी है और उन्होंने दावा किया है कि ग्रेनेड फेंकने वाला शख्स भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीबीसी हिंदी के लिए अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन।
और अब समय है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। नवीन नेगी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बताइए नवीन, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी कुलदीप, आज दिल्ली से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी समाचार पत्रों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर सुर्खी लगाई है, रिजॉल्व डिजॉल्व। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स का शीर्षक कहता है कि जम्मू कश्मीर का राजनीतिक रहस्य जो है वो एंटी क्लाइमेक्स पर आकर खत्म हुआ
जी,
है।
जी, सुलझने की ओर बढ़ता हुआ वापस उलझ गया। और नवभारत टाइम्स ने इसका शीर्षक दिया है, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने की चाहत पर हो गई बर्फबारी।
जी, और वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने इस पूरी राजनीतिक हलचल को जो है गेम ऑफ थ्रोन्स का एक शीर्षक लगा के भी समझाया है। तो बड़े दिलचस्प हेडलाइंस सभी अखबारों ने दी है। दूसरी खबरों की ओर बढ़े कुलदीप, तो इंडियन एक्सप्रेस ने आरबीआई से जुड़ी एक खबर प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि सरकार एमएसएमई यानी लघु उद्योगों के बाद अब रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी आरबीआई पर दबाव बना सकती है। खबर के मुताबिक 14 दिसंबर को होने वाली आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर में नौकरी जाने के खतरों को कम करने पर विचार हो सकता है और जिसके तहत केंद्रीय बैंक को नॉन बैंकिंग वाली वित्तीय कंपनियों के लिए मुद्रा का प्रवाह बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है, यानी उन्हें और ज्यादा लोन देने की बात की जा सकती
है। एक खबर और नवभारत टाइम्स में पहले पन्ने पर है और प्रमुखता से इस खबर को छापा गया है। शीर्षक है, नोटबंदी से खेती बर्बाद होने की रिपोर्ट पर हंगामा, मंत्री ने नकारा। नोटबंदी के फैसले ने किसानों की कमर तोड़ दी थी, ऐसा दावा किया गया है। वित्त मामलों की संसदीय समिति को सौंपी गई कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट में जो कि मीडिया में आ गई है, इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बुधवार को कड़ा हमला बोला और उसके बाद कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ट्वीट करके रिपोर्ट के तथ्यों को, अपनी ही सरकार के रिपोर्ट के तथ्यों को गलत बताया।
जी कुलदीप, एक और खबर इंडियन एक्सप्रेस में मीटू अभियान से जुड़ी हुई छपी है। इसमें बताया गया कि बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी, जिन पर कि यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगे थे, उन्हें 3 सदस्यीय कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है। हालांकि इसके बाद बीसीसीआई की प्रशासनिक समिति जो है दो गुटों में बट गई है। एक तरफ जहाँ विनोद राय ने राहुल जौहरी को दोबारा काम पर लौटने के लिए कहा है, वहीं जो दूसरी सदस्य हैं डायना एडुल जी, उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग की है।
एक खबर और नवभारत टाइम्स में ही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब तक उन पर 4 हमले हो चुके हैं और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीएम पर 4 हमले किए गए हैं। जाहिर है कि सोची समझी साजिश के तहत ये हमले करवाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में उन पर मिर्च से हमला किया गया था।
जी, और भारतीय थल सेना प्रमुख बिपिन रावत का बयान टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में मौजूद अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेज देना चाहिए। इस खबर में बिपिन रावत ने कहा कि वे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन यानी NRC का समर्थन करते हैं और जो लोग इसके समर्थन में नहीं हैं वे देश की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते। हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित एक खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जो ऐप बनाई गई नमो ऐप, उसमें बताया गया कि इस ऐप के जरिए भाजपा के ही 90 सांसदों की पोल खोल दी। कई लोगों ने जो है अपने सांसदों के खिलाफ जो है अपील दायर की है इस ऐप के जरिए।
बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए नवीन नेगी। और अब वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। पिछले दिनों ताइवान की राजधानी ताइपेई में हुए गोल्डन हॉर्स अवार्ड कार्यक्रम में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए सम्मान जीतने वाली निर्देशक फू युए ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिल जाएगी। इसके बाद चीन से आई हस्तियों ने इसका विरोध किया और कुछ लोग कार्यक्रम छोड़कर चले गए। ये कम्युनिस्ट चीन और रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान के रिश्तों की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। चीन और ताइवान के बीच रूठने मनाने, लड़ने झगड़ने और कूटनीतिक चालों का इतिहास 70 साल पुराना है। इस बार के दुनिया जहान में इसी पर रोशनी डाल रहे हैं आदर्श राठौर।
दुनिया जहां, चीन और ताइवान, ये दो नाम आप सब जानते हैं। जिसे हम चीन कहते हैं उसका आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जिसे ताइवान के नाम से जानते हैं उसका आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों के नाम में चाइना जुड़ा हुआ है। व्यावहारिक तौर पर ताइवान ऐसा द्वीप है जो 1950 से ही स्वतंत्र रहा है, मगर चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता है। एक ओर जहां ताइवान खुद को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानता है, वहीं चीन का मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल होना चाहिए और फिर इसके लिए चाहे बल प्रयोग क्यों न करना पड़े। चीन और ताइवान के इस पेचीदा विवाद की कहानी शुरू होती है साल 1949 से। ये वो दौर था जब चीन में हुए गृह युद्ध में माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काईशेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कोमिंगतांग पार्टी को हराया था। जेएनयू में पढ़ाने वाली डॉक्टर गीता कोचर बताती हैं कि इस हार के बाद राष्ट्रवादी नेता चियांग काईशेक ने भागकर ताइवान द्वीप में शरण ली थी।
सिविल वॉर के चलते एक युद्ध जो दोनों पार्टीज जापान के खिलाफ कर रही थी, उसके चलते जब जापान ने पूरा इलाके छोड़ने शुरू किए तो उन्होंने साफ तौर पे नहीं कहा कि हम ये केएमटी की सरकार को दे रहे हैं या कम्युनिस्ट सरकार को दे रहे हैं। तो ये एक मूल मुद्दा बन गया कि ये जापान ने ये ताइवान किसको दिया। लेकिन क्योंकि वहां पे केएमटी की सरकार बनी थी तो केएमटी सरकार हमेशा से यही बोलती रही कि मान्यता जो है पूरे चीन की मान्यता उनकी सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि रेवोल्यूशन जो 1911 का मैं रेवोल्यूशन बताई हूँ उसके बाद से एक ही सरकार को मान्यता दी गई थी जो कि केएमटी सरकार थी।
चीन की सत्ता से हटने के बाद राष्ट्रवादी कोमिंगतांग के नेता चियांग काईशेक ने ताइवान में शासन चलाना शुरू कर दिया। उस समय चीन में सत्ता में आ चुके कम्युनिस्टों के पास नौसैनिक ताकत न के बराबर थी। यही कारण था कि माओ की सेना समंदर पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर सकी। डॉक्टर गीता कोचर बताती हैं कि यहीं से दो राजनीतिक इकाइयां अस्तित्व में आई और वो दोनों आधिकारिक चीन होने का दावा करने लगी।
क्योंकि मेनलैंड चाइना में कई इलाकों में कोमिंगतांग गृह युद्ध में हार गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो गया था, तो माओ ज़ेडुंग ने ये बोला कि जो सरकार है उसकी मान्यता सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की हो सकती है। तब से ये मूल मुद्दा शुरू हो गया कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आई सरकार कम्युनिस्ट सरकार इसको मान्यता देनी चाहिए कि ये चीन की सरकार है, या जो कोमिंगतांग इतने समय से इस पे राज कर रही थी 1912 से उसकी सरकार राज कर रही थी और उसी को जापान ने कई इलाके भी दिए जो कि ताइवान उसमें से एक था, तो उस आइलैंड पे वो अपनी सरकार बनाई है, तो सही मायनों में उसी की सरकार को मान्यता दी जानी चाहिए।
इसके बाद दुनिया की सियासत तेजी से आगे बढ़ी। पहले ताइवान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी हिस्सा था। शीत युद्ध के दौरान ताइवान को अमरीका का पूरा समर्थन मिला हुआ था, लेकिन फिर हालात एकदम बदल गए। जेएनयू में पढ़ाने वाले डॉक्टर रवि प्रसाद नारायण बताते हैं कि इसके पीछे बाजार का बड़ा हाथ था।
क्योंकि 1970 में आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखो कि अमेरिका के बिजनेस एंटरप्राइजेस खोज रहे थे नए नए मार्केट, और उनको पता चला कि चाइना में 600 मिलियन लोग थे उस टाइम, ये बहुत बड़ा मार्केट है, और ताइवान में थे कोई 15 मिलियन लोग या 18 मिलियन लोग। 18 मिलियन और 600 मिलियन बहुत फर्क तो पड़ता ही है। तो अमेरिकन कॉरपोरेट एंडेवर था कि मेनलैंड चाइना को रिकग्नाइज करो।
चीन के उभार के साथ ही आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ताइवान को दर्जन भर देश ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देते हैं। ये देश भी आकार में बहुत छोटे हैं, जैसे कि हैती, पराग्वे और अल सल्वाडोर। जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह बताते हैं कि ये ताइवान को अलग थलग रखने की चीन की आक्रामक नीति का परिणाम है।
ये हमेशा से और आज भी एक चीन की विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है कि किसी भी देश से वो यदि कोई भी इनिशिएटिव शुरू करता है या संबंध बनाता है तो उसमें वो वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्स करना जरूरी है, ऐसा एक्सपेक्ट करता है। तो हर बार देशों से जब बातचीत होती है चीन की तो उसमें इस तरह की स्टेटमेंट हमेशा दी जाती है कि वो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, जिसका मतलब है कि वो केवल मेनलैंड चाइना या कम्युनिस्ट चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही असली चीन मानते हैं। तो इसके चलते धीरे धीरे जैसा हमने कहा कि अब केवल 19 छोटे टापुओं वाले देश रह गए हैं जो ताइवान को एक देश के रूप में मानते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ताइवान पूरी तरह से दुनिया से कट गया है और उपेक्षित हो गया है। कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ जाने के बावजूद ताइवान की गिनती एशिया के सबसे बड़े कारोबारी देश के तौर पर होती है। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उत्पादन के मामले में दुनिया का अग्रणी देश है और इसकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जैसे अन्य देश जो ताइवान को मान्यता नहीं देते वो उससे रिश्ते कैसे रखते हैं। डॉक्टर गीता कोचर,
अगर आप कई देश देखें पूरे दुनिया में, यहाँ तक कि इंडिया भी उसमें शामिल है, कि जो भी ताइवान के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं वो उसकी कोई एम्बेसी यहाँ पे नहीं बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज, लाइजों ऑफिसेज, इस तरह के जो अलग तरीके के लोगों का कल्चर को प्रमोट करने के लिए ऑफिसेज अध्यक्ष टाइप के ऑफिस जरूर बनते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक उसमें जाएं तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशन सिर्फ चीन के साथ होते हैं।
बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थान ताइवान को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। कहीं इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, कहीं ताइपेई या कहीं चाइनीज ताइपेई, मगर कई देशों के ताइवान के साथ आर्थिक संबंध है और ताइवान के प्रति इस आकर्षण से चीन भी बचा नहीं है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह,
वो वो जो आकर्षण है ताइवान का, उसकी वजह से आज भी करीब 80 देश अपने आप को उससे जुड़ा पाते हैं, पर जाहिर है कि वो उसको एक औपचारिक रूप से देश का दर्जा नहीं देते हैं, संबंध बनाए रखते हैं। तो ये चीन का प्रभाव बढ़ गया पिछले 3 या 4 दशकों में, उसी का नतीजा है कि उसके नजरिए से ताइवान भी व्यापार और निवेश से बहुत जुड़ गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। पर एक जब औपचारिकता की बात आती है तो कभी कभी इस तरह का आक्रोश नजर आता है दोनों तरफ से, कि जबकि चीन ताइवान को अपना एक प्रांत मानता है और ताइवान अपने आप को एक देश का दर्जा बनाए रखने की बात करता है, तो कभी कभी इस तरह से आपस में तनाव नजर आता है दोनों तरफ से।
चीन ताइवान को अपना अंग मानता है और चाहता है कि आधिकारिक रूप से दोनों एक हो जाएं। चीन ने इस दिशा में काफी कोशिशें भी की हैं। डॉक्टर स्वर्ण सिंह कहते हैं कि इन कोशिशों के बावजूद ताइवान खुद को अलग मानता है।
चीन के दूसरे बड़े नेता तंग शाओपिंग ने एक वन कंट्री टू सिस्टम्स का जो है विचार रखा था, और कुछ उसी बड़े विचार में मकाओ और हांगकांग को जोड़ा गया है। हालांकि मकाओ और हांगकांग दोनों ही अभिन्न अंग हैं आज चीन का, पर उनमें कुछ सहूलतें या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ अब आज भी बनी हुई है। जैसे हांगकांग में अपना अलग से झंडा है, पुलिस अलग से है, करेंसी अलग से है, इस तरह से मकाओ में भी कुछ छूट दिए हुए हैं, पर वो अपने आप को आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पूर्णतः हिस्सा मानते हैं। इस तरह की बातचीत ताइवान से भी लगातार होती रही, पर वहाँ पर इसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। दोनों तरफ से अपने व्यापारिक और सामाजिक यातायात के संबंध काफी हद तक बन चुके हैं। केवल औपचारिकता के नजरिए से वो दोनों अलग एक दूसरे को देखते हैं। अभी तक चीन नहीं देखता उसको अलग से, पर ताइवान अपने आप को मानता है कि वो अलग है चीन से।
फिर सवाल उठता है कि चीन और ताइवान के बीच ये जो दशकों पुराना खिंचाव चला रहा है, उसका हल क्या होगा? प्रोफेसर स्वर्ण सिंह,
विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आने वाले दशकों में या आने वाली शताब्दी में इसका बहुत महत्व नहीं रह जाएगा कि एक राज्य दूसरे राज्य से किस तरह से जुड़ता है, लोग आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। और जाहिर है कि इसका प्रभाव बढ़ने से राज्यों के संबंधों में भी कुछ न कुछ सफलता मिलेगी उनको भी अपने इस तरह के जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए।
चीन और ताइवान के बीच रिश्तों की कोई दूसरी मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं है। दोनों ही देशों के नागरिकों की संस्कृति, भाषा और इतिहास एक है, लेकिन दो अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की वजह से 70 साल पहले हुए अलगाव को एकजुटता में बदलना मुश्किल हो रहा है। ताइवान लिबरल डेमोक्रेसी की हामी भरता है और चीन वन पार्टी सिस्टम वाला देश है। इस मिलन में यही सबसे बड़ा पेच है।
दुनिया जहान सुना रहे थे आदर्श राठौर। आपको कैसा लगा लिखिएगा जरूर। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। शुरुआत करना चाहूंगी बॉक्सिंग से। 5 बार की चैंपियन एमसी मैरीकॉम 48 किलो वर्ग और लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम वर्ग में मंगलवार को 10वीं आयबा महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों का मेडल पक्का हो गया है, जबकि युवा मुक्केबाज मनीषा मौन और भाग्यवती काचरी को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सोनिया चहल, पिंकी रानी और सिमरनजीत ने भी क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया है। सीमा पुन्या सीधे क्वार्टर फाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। एमसी मैरीकॉम ने दिन की शुरुआत आईबा चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में चीन की यू वू पर 5-0 की शानदार जीत से की। अब वो आज उत्तर कोरिया की हयांग मी किम से भिड़ेंगी, जिन्हें उन्होंने पिछले साल एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में हराया था। खेल समाचारों में आज इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 महीनों से चले आ रहे राज्यपाल शासन के बाद कल विधानसभा को भंग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग करने की घोषणा की और कहा कि फिलहाल राज्य में किसी भी दल के पास स्थिर सरकार बनाने का मौका नहीं है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि ब्रेग्जिट के मसौदे पर यूरोपीय कमीशन के प्रमुख जीन क्लॉड जंकर के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही। टेरेसा मे ने कहा है कि वे इस मुद्दे से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगी। अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि मंगल अभियान के लिए भेजा गया उनका स्पेसक्राफ्ट इनसाइट सोमवार तक मंगल की सतह पर पहुंच जाएगा। ब्रिटेन के एक नागरिक को संयुक्त अरब अमीरात में जासूसी के आरोपों के चलते उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ब्रिटेन ने इस फैसले पर निराशा जाहिर की है और कहा है कि वह इस मामले को यूएई के सामने सर्वोच्चतम स्तर तक उठाएंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए बीबीसी हिंदी की मल्टीमीडिया वेबसाइट के साथ। नमस्कार।